ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री गोवर्धन में आपका स्वागत है। आज हम गोवर्धन की सैर करेंगे। गिरिराज गोवर्धन जो भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली में उठाया 7 दिन और 7 रात, तो उसका ब्रजवासी पंच क्या है? 7 कोस का पर्वत, 7 कोस के प्रभु रामचंद्र के ब्रिज में उसको बिठाने का प्लान था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने उनको वरदान दिया कि जब मैं कृष्ण के रूप में द्वापर के अंत में आऊँगा तो 7 दिन और 7 रात अपने सर पे आपको उठा के रखूँगा। दिस इज ब्रजवासी पंच। तो भगवान की लीला जो है बहुत अनंत है। और कल हमने ये भी बताया था कि कैसे हनुमान जी एक अवतार लेकर वहाँ पर बैठे। क्या नाम उसका? पूंछरी का लौटा बाबा। तो वो हनुमान जी का अवतार है। वो ग्वाल बाल के रूप में वहाँ पर रहे और पूंछरी का लौटा बाबा जब भी कृष्ण भगवान जा रहे थे ना, मथुरा जा रहे थे, तो उस दिन पूंछरी के लौटा बाबा के घर से लंच प्रसाद का इंतज़ाम था। गौचारण में पिकनिक में उनके यहाँ से प्रसाद आने वाला था। तो देखते हैं तो पैदल चलने के बदले में रथ में बैठ के जा रहे हैं। रथ में तो कभी कृष्ण भगवान वृंदावन में बैठते नहीं, अक्रूर जी के साथ बैठे हुए हैं, मथुरा से आए हुए आदमी के साथ बैठे हुए हैं। तो फिर वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले अभी मथुरा हो के आता हूँ। अरे मेरे घर का आज स्पॉन्सरशिप है। कोई बात नहीं, मैं परसों आ जाऊँगा, 2 दिन में आ जाऊँगा। बोले मैं यहीं बैठूँगा, जब तक तुम नहीं आओगे तो खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, इधर ही बैठ कर रहूँगा, किधर जाऊंगा नहीं। डोंट वरी, मैं 2 दिन में आता हूँ। इसके बाद में 115 साल नहीं आए और पूंछरी का लौटा बाबा जो है उधर ही बैठे रहे। तो 115 साल के ऊपर का समय ना भोजन किया, ना पानी पिया, ना सोया, ना कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा मोटा कैसा है? क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान के विरह के भाव में, भगवान का भाव रूप में उत्कट संग करते वहाँ बैठे हैं, इसलिए वो दुबले नहीं हुए हैं। विरह भाव जो होता है ना, वो उसके 2 अंग होते हैं। अंदर से भगवान का बहुत उत्कट संग होता है और बाहर से आंसू आते हैं, अश्रु आते हैं, बहुत दुख होता है, छाती पीट के रोते हैं, खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं। ये बहुत अजीब प्रकार का भाव है। वो कुछ कुछ हद तक हम लोग इस दुनिया में अनुभव करते हैं, लेकिन विरह का अनुभव करने के बाद में आदमी मोटा नहीं होता है, दुबला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, बीमार हो जाता है, कभी भी मर भी जाता है। लेकिन भगवान के विरह में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। भगवान के विषय में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा समझने के लिए डिफ़िकल्ट होती है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो एनीवेज, पूंछरी का लौटा बाबा ये संयम की मूर्ति है। ही इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ पेशेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। क्योंकि भगवान ने कहा था ना मैं आऊँगा, तो ही वॉज वेटिंग, ही हैड फेथ इन द वर्ड ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल कम। तो वैसे ही ब्रजवासी लोग जीवित जीवित क्यों रहे, कैसे रहे? इतना कृष्ण पर प्रेम था और 2 दिन के बोलने के बाद में 2 दिन क्या 20 दिन 200 दिन 115 साल तक नहीं लौट के आए, तो जीवित कैसे रहे? क्योंकि उसने वादा किया था मैं आऊँगा। एक कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि राधा रानी साथ में नहीं गई थी ना उनके, राधा रानी उनके बीच में थी, तो राधा रानी के प्रेम के लिए तो कम से कम लौट के आएंगे। राधा रानी को देखकर वो जीवित रहे सब लोग, ये विल कम। राधा रानी का प्रेम ऐसा था। और कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण राधा रानी को लेकर क्यों नहीं गए, उनको पता था अगर मैं राधा रानी को लेकर जाऊंगा सब ब्रजवासी मर जाएंगे, तो राधा रानी को छोड़ के गए। राधा रानी उनकी आशा थी, राधा रानी को देखकर वो जीवित रहे इतने साल तक। तो ऐसा ही गोवर्धन जो है इसके गिरी कंदरा में, कंदरा मतलब गुफा में, बहुत लीला किया भगवान ने, एकांत लीला किया, गिने चुने गोपियों के साथ किया, सभी ग्वाल बालों के साथ गौचारण किया, हर प्रकार की लीला भगवान की गोवर्धन में संपन्न हुई। जैसे यमुना किनारा है ना, यमुना किनारा, यमुना किनारा ने भगवान की सब प्रकार के लीलाओं का अवलोकन किया है। यमुना ने भगवान का शांतरस में लीला देखी है, दास्य में देखी है, शांत साख्य में देखी है, वात्सल्य में देखी है, माधुर्य में देखी है, हर प्रकार की लीला का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन यमुना ने किया है। वैसे गोवर्धन ने भी भगवान के हर लीला का दर्शन किया है। ये बहुत विशिष्ट जीव है, क्योंकि ग्वाल बाल जो होते हैं वो केवल भगवान के साथ सख्य लीला करते हैं, फ्रेंडशिप का लीला करते हैं और बस, और कुछ नहीं, दे आर ओनली फ्रेंड्स विद कृष्णा, उतना ही पता है उनको। और गोपियाँ जो भगवान को मिलती है रात को तो खाली प्रेम लीला करती हैं, बाकी वात्सल्य वगैरह उनको पता नहीं है। तो ये यमुना एक गोपी होने नाते भी भगवान की बाल लीला को भी देख रही है, सख्य को भी देख रही है, गौचारण भी देख रही है, रासलीला भी देख रही है, सब कुछ देख रही है। और गोवर्धन भी ऐसे ही है, गोवर्धन भी बहुत सुंदर। कहते हैं भगवान के लीलाओं में से 90% लीलाएँ जो है वो यमुना किनारे हुई है, हर प्रकार का। आप देखो राक्षस को मारने का लीला बहुत सारा यमुना के किनारे पे हुआ है, रास लीला बंसीवट यमुना किनारे हुआ है, कृष्ण भगवान ने मुरली भी राधा रानी से सीखी है, कहाँ पर, यमुना किनारे पे, डांस करना सिखाया यमुना किनारे पे, नौका विहार यमुना में, जल क्रीड़ा जल विहार यमुना में, कालिया का मर्दन यमुना किनारे, यमुना के अंदर। इस तरह से यमुना का बहुत बड़ा विशेष अंग है। और जब भी कृष्ण की पत्नियां कृष्ण के जाने के बाद जब भी वृंदावन आई, जब वहाँ भगवान की इच्छा थी कि उनको लेके आना चाहिए, उन्होंने महाराज परीक्षित और उनके ग्रेट ग्रैंडसन वज्रनाभ को, दोनों को बता दिया था कि जब मैं जाऊंगा तो मेरी पत्नियां वो दुखी हो जाएंगी, आप उनको वृंदावन लेके जाना। तो वृंदावन लेके जाती हैं तो सबसे पहले वृंदावन में उनको यमुना का दर्शन होता है, और सब रानियां रो रही थी, बिलख रही थी, दुख कर रही थी, आंसू बहा रही थी, और यमुना जी बहुत आनंद से उछल रही थी। तो यमुना जी भगवान की चौथी पत्नी है ना, आपको पता है ना, यमुना जी इज फोर्थ वाइफ ऑफ कृष्णा। नहीं मालूम था, कालिंदी वही यमुना, उनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ है। तो वो कैसा है ना, खांडव वन जब पांडवों को दिया गया तो खांडव वन तो वन था, मतलब ऐसा ही मजाक किया था कौरवों ने पांडवों के साथ, खुद तो ले लिया अपना अच्छा और जंगल दे दिया उनको कि जिंदगी भर काटते रहो तब तक जिंदगी समाप्त हो जाएगी, इतना सघन जंगल था वो। लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसा सहायता किया कि कुछ ही समय में खांडवगण को काट दिया पूरा, और जला भी दिया पूरा, अग्नि को खिला दिया, और ये सब करके थके वो लोग यमुना किनारे बैठे थे, क्योंकि दिल्ली में भी यमुना है ना, हस्तिनापुर के पास भी यमुना है, वहाँ बैठे थे। तो अर्जुन को कहा कृष्ण ने, मुझे बड़ी प्यास लग रही है तो जल लेके आना। तो कृष्ण के लिए अर्जुन जल लेने के लिए यमुना में गए, तो यमुना किनारे पे यमुना देवी स्वयं विहार कर रही थी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे प्राण प्रियतम आके बैठे हैं, तो वो यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो अर्जुन उनको देखकर पूछते हैं कि इस सुनसान जंगल में अकेली सजी धजी हुई सुंदर युवा अवस्था में है ऐसी की लड़की कौन यहाँ घूम रही है? तो उनको पूछते हैं वो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, हु आर यू? तो कहते हैं मैं सूर्य पुत्री हूँ, यमुना ये मेरा जल है, और इस जल के अंदर मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरे लिए एक जगह बना दी है तप करने के लिए, वहाँ पर मैं तप कर रही हूँ, तभी यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो कह रहे कि विष्णु को प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ, और वही आपके साथ में बैठे हुए हैं। तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य लगा। अर्जुन ने जल लाकर दिया कृष्ण को और बोला कि ऐसे ऐसे लड़की मुझे वहाँ मिली। तो भगवान झट से उठे और गए वहाँ पर और यमुना देवी का हाथ पकड़ा और तुरंत स्वीकार कर लिया उसको अपनी पत्नी के रूप में। फिर आगे जाकर उसका द्वारका में विवाह हुआ है। तो यमुना देवी ब्रज की नदी भी है और भगवान की पत्नी भी है। इसका मतलब द्वारका में स्वकीय रस है। स्वकीय रस नहीं, क्या ऑफिशियल वेडिंग है। पति पत्नी का रिश्ता है, पति पत्नी साथ में रहते हैं, अपने अपने महल में रहते हैं, ऑफिशियल, नथिंग अबाउट अनऑफिशियल। तो एक जगह पर स्वकीय रस ऑफिशियल और एक जगह पर परकीय रस अनऑफिशियल गोपी के रूप में। तो ये रानियां जो है वो जानती थी कि हमारी तो सौतन है, ये हमारे साथ में रहती थी। तो यहाँ पर नदी के रूप में उछाल रही है, उछालना मतलब कि आनंद का अनुभव दे रही है। तो कह रहे हैं, अरे तुम, हम सब लोग रो रहे हैं, बिलक बिलक के रो रहे हैं, और तुम भी भगवान की पत्नी होने पर भी कैसे उछल रही हो आनंद से। तो वो कहती है कि हम वृंदावन वासी हैं नंबर वन, और वृंदावन वासी होने के नाते हम सब राधा रानी का एक्सपांशन है, राधा रानी का हम लोग अंश हैं। और राधा रानी का अंश होने के नाते हमारे जीवन में कभी दुख नहीं होता है, दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं और सुख में भी सुख का ही अनुभव करते हैं। तो रानी को कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे होता है, पति के देहांत होने के बाद दुख होता है ना, हमको भी हो रहा है, आपको भी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। बोले जाओ आप, फिर उद्धव जी आपको ये सब एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए उद्धव जी के पास गए वो, फिर उद्धव जी ने भागवत सुनाकर उनको ये प्रेम का रहस्य जो है वो समझा दिया है। तो राधा यमुना देवी क्या बता रही है कि राधा रानी मूर्तिमान प्रेम है कृष्ण के प्रति, और उनके संग में रहने से विरह में भी अति उत्कट प्रेम का अनुभव होता है और मिलन में भी प्रेम का अनुभव होता है। वृंदावन के अंदर विरह भी है और वृंदावन के अंदर मिलन भी है, और दोनों में दिव्य आनंद ही आनंद है। थोड़ा सा कठिन विषय है लेकिन सिंपल समझना ऐसा ही है कि वृंदावन में केवल दिव्य आनंद है। वो किस प्रकार से आएगा यू डोंट नो, बट आएगा ज़रूर। वृंदावन में जाने से दिव्य आनंद का अनुभव होगा। तो आज हम गोवर्धन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो गोवर्धन कैसा है, वो मोर के आकार का है, हाँ, और वो दो पैर पे खड़ा नहीं है, उसके दो पैर आकाश में हैं, ऐसे आंखें ऊपर है उसकी, और उस तरफ पूछ रही है, यानी पूछ है, इस तरफ दो आंखें हैं, बीच में हृदय है और आगे का हिस्सा है। दो आंखें जो है वो राधा कुंड और श्याम कुंड है। गोवर्धन की दो आंखें जो है वो राधा कुंड श्याम कुंड है, और हृदय जो है वो कुसुम सरोवर है, और पूंछरी जो है, पूंछरी जैसे पूंछ, वो उत्तर पश्चिम की तरफ है, पूंछरी का लौठा बाबा। तो पूंछरी मतलब जो वहाँ से वो मोर पंख, जो मोर जो है उसका पूंछरी जैसा आकार हो जाता है, छोटा सा हो जाता है और समाप्त हो जाता है, और उसी के किनारे पे वो लौठा बाबा बैठे हुए हैं कृष्ण का इंतज़ार करते हुए। कहते हैं कि कृष्ण भगवान तो आए ही नहीं, तो दो उसमें वर्णन आते हैं। एक तो द्वापर में कहते हैं कृष्ण भगवान उसको मिले ही नहीं, एक में लिखा है कि कृष्ण भगवान जब लास्ट में दंतवक्र को मारने के लिए आते हैं, दंतवक्र ये शिशुपाल का मित्र था, और शिशुपाल को मारने के बाद कृष्ण को मारने का उसको बहुत इच्छा था, बहुत द्वेष करता था कृष्ण के साथ। तो यहाँ पर ब्रजवासी लोग जो हैं वो विरह में इतने व्याकुल हो गए थे कि मैसेज जैसा आया था कि अभी कुछ देर में जाएंगे, वो शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने फिर दंतवक्र को मारने का बहाना बनाया, मथुरा में प्रवेश किया, दंतवक्र का वध किया, और फिर यमुना पार करके ब्रज में आए और सारे ब्रजवासियों से मिले। तब वो श्रीदामा से भी मिले जो भांडीरवट में इंतजार कर रहे थे, तब वो पुछर का लौटा बाबा को मिले, और तब सारी गोपियों को, ग्वाल सबको मिले, और गोपियों ने कहा कि हमने सुना कि द्वारका में तुमने हमारे विरह में बहुत आंसू बहाए। बोले हाँ, हमने सुना है कि हमारे विरह में तुमने आंसू बहाए तो उसकी नदी बनी है, गोमती नदी, उसके दर्शन कराओ। तो भगवान ने गोपियों की इच्छा के अनुसार कोशी में गोमती नदी प्रकट की है, कुंड के रूप में, गोमती कुंड। फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर समुद्र नहीं है, आपने तो समुद्र में नगरी बसाई थी आपकी, तो हमको समुद्र का भी दर्शन कराओ। तो भगवान ने वहाँ पर रत्नाकर कुंड के रूप में समुद्र प्रकट किया है, द्वारका का समुद्र। और ये दोनों स्थान कोशी में है। कोशी किधर है? नंदगांव से 25 किलोमीटर दूर है, हाईवे पे आता है वो। और उसी गांव में कोशी में नंद बाबा का वो था तिजोरी, कोश, कोश जिसका नाम कोशी है, पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर नंद बाबा का तिजोरी था। वहीं पर एक जगह है शेषशाही, वहाँ पर गोपियों ने कहा था कि हम जानते हैं आप भगवान हो और शेषनाग पर विराजमान रहते हो, हमको दर्शन कराओ। तो कृष्ण ने मना कर दिया, नहीं मैं कुछ भगवान भगवान नहीं, मैं तो आपका ग्वाल बाल फ्रेंड हूँ, बड़ा जिद मत करो, ऐसा हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये धमकी से फिर वो उनको अपना शेषशाही रूप दिखाते हैं। बलराम जी नाग बन जाते हैं और कृष्ण भगवान विष्णु बन जाते हैं, और विष्णु भगवान शेषनाग पर लेट जाते हैं। शेषशाही, शेष के ऊपर शयन करने वाले, ये दर्शन कोशी में है। ऐसा एक एक लीला है भगवान का, बहुत सुंदर सुंदर। तो गोवर्धन का हृदय जो है वो कुसुम सरोवर है। तो वहां पर बेसिकली कुसुम मतलब क्या? पुष्प, यानी फूल, यानी फ्लावर्स। उसका अनेक नाम है, सुमन वन, पुष्प वन, कुसुम वन, ऐसे कई नाम है। और राधा रानी और गोपियाँ वहाँ पर फूल बिनने के लिए आती थी। भगवान राधा रानी का वैसे बहुत सारे प्रिय वन हैं फूल बिनने के लिए, उसमें से एक प्रमुख वन है कुसुम सरोवर, कुसुम वन। तो कुसुम वन के अंदर वो हमेशा फूल बिनने के लिए आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने ऐसा बताया कि मैं थोड़ा बीमार हूँ, आप चले जाओ गाय चराने के लिए, मैं आ ही रहा हूँ पीछे पीछे। तो जब ये कृष्ण भगवान नहीं आते ना, तो ग्वाल वालों को गाय चराने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट कृष्ण में होता है ना, गाय चराने का तो बहाना है। तो कृष्ण कहते मैं नहीं आऊँगा, तो ग्वाल बाल को बताते कि आप जाओ और जाके आओ। तो ये कुछ ही पास में जाते हैं और लौट के आते हैं, और कृष्ण भगवान को विशेष लीला करने का प्लान रहता है जहाँ उनको ग्वाल बाल नहीं चाहिए। साथ में जाऊँगा तो सब दूर दूर तक ये मेरे साथ जाएंगे। और उस दिन क्या था, उस दिन सांझी लीला का उत्सव था। आप लोगों को पता है सांझी लीला का उत्सव क्या होता है? सांझी लीला पितृपक्ष में यहाँ पर सब लोग श्राद्ध करते हैं, वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव चलता है। वो एक होती है सांझी देवी, जो पार्वती देवी का अवतार है। तो सांझी देवी का पूजन होता है 15 दिन, जब यहाँ पर श्राद्ध की सेवा होती है। और सांझी यानी जैसे समझो भी यहाँ से लेकर वहाँ तक जगह, ऐसे षटकोनी अष्टकोनी ऐसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। वो प्लेटफॉर्म गोबर से बनाते हैं, और गोबर सूख गया तो उस पर फूलों की रंगोली बनाते हैं। फूल अलग अलग रंग के लाते हैं, उसको सजाते हैं और बीच में लीला भी बनाते हैं। पहले 10 दिन फूलों की रंगोली होती है, आखिरी 5 दिन रंगों की रंगोली होती है, कलर्स की। और ये जब बनाते हैं तो इसको सांझी कहते हैं, और वो सांझी जो है वो पूजते हैं, यानी उसको अर्पण करते हैं सांझी देवी को। कभी कभी सांझी गोबर की बनाते हैं, खाली गोबर की, और वो दीवार पर भी बनाते हैं, दीवार पे देवी का चित्र बनाते हैं उसका, और उसका पूजन करते हैं। तो सांझी लीला मतलब फूल बिनना, घर जाना, फूलों का सांझी बनाना, और शाम के समय सांझी का पूजन करना, और सांझी को क्या पूज कर क्या इच्छा प्रकट करना कि मेरे मन में जो है उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, ये सांझी लीला है। तो उस दिन सांझी लीला में कुसुम वन में गोपियाँ फूल बिनने जाने वाली थी, ये खबर कृष्ण को मिल चुकी थी। और कृष्ण को वहाँ जाकर कुछ लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने ग्वाल बालों को बताया कि मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ आज, ताकि वो पास में जाकर लौट के आ जाए, फिर ये जाने के लिए फ्री हो जाए। तो वैसे ही वहाँ ग्वाल बाल पास में गए, वापस आ गए, तो कृष्ण कुछ देर बाद निकले, अकेले निकले। तब तक गोपियाँ वहाँ पर कुसुम वन में पहुँच गई थी। कुसुम वन कहाँ पर है? गोवर्धन के बीच में है, राधा कुंड श्याम कुंड से 1 किलोमीटर दूर है। बहुत विशाल कुंड है, बहुत सुंदर छतरी बनी हुई है। तो गोपियाँ वहाँ पर फूल बीनने में बहुत बिजी हो गई। सब लोग अपने अपना फूल बीन रहे हैं, क्योंकि वृंदा देवी का प्लानिंग है उसके पीछे कि किस गोपी को कौन से रंग के फूल बीनने हैं और उसके बाद में कौन गोपियाँ उसका सब बनाएंगी और कैसे सांझी कैसे बनेगी। तो हर गोपी के घर में सांझी पूछती है, तो हर गोपी अपना अपना प्लानिंग के हिसाब से फूल बीन रही है। और उनसे गोपियों से एक बात सीखना बहुत ज़रूरी है, गोपियाँ कुछ भी काम करती है ना तो मग्न होकर करती हैं, वो सब भूल जाती हैं मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, गोपी हूँ कि ग्वाल बाल हूँ, किसकी बेटी हूँ, किसका बेटा, कुछ समझ में नहीं आता उनको। सेवा में इतना रममाण हो जाते हैं, इतना मशगूल हो जाते हैं कि अपना अस्तित्व भी खो बैठते हैं। तो ऐसे सब कुछ भूल कर मग्न होकर फूल बीन रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, किसी को भानने खाली फूल दिख रहे, बस फूल बीन रहे और इसे अपने पल्लू में उसको बांध के उसका गैप बनाया है, थैली बनाया है, तब भर रहे हैं उसके अंदर। उतने में वहाँ से माली आता है, बड़ी मूछ वाला, बड़ा फेटा पहन के, डंडा लेके ऐसे, बहुत उसका चेहरा उग्र दिखाई पड़ता है, ऐसा बड़ा तिल है यहाँ पर, बड़ा मोटा, उसे ठाक ठाक करके डंडा जमीन पर पटक पटक के आ रहा है वो, ताकि वो सावधान हो जाए गोपियाँ कि मैं आ रहा हूँ। तो गोपियाँ डंडे की आवाज़ सुन के सावधान हो जाती है। तो वो गोपियाँ देखती है, अरे माली आ गया है, हमको पकड़ेगा, दंड देगा। तो बोले कौन फूल बीन रहा है यहाँ पर? तो गोपियाँ सावधान हो जाती है और तुरंत अपना आपको निकालती है वहाँ से, क्योंकि वो बुशेस है ना, बुशेस के अंदर तो कांटे भी होते हैं, उनके पल्लू भी अटके हुए, सब छुड़ाते हैं अपना अपना, और ये भी जो फूल इकट्ठा किया वो भी संभालते हैं। कुछ फूल गिर जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, भागते हैं, भागते भागते राधा रानी भागो भागो माली आ रहा है। तो राधा रानी जिस क्या कहते हैं झाड़ी में फूल बीन रही थी और बहुत सारे कांटे थे, तो उसको पता नहीं था, वो इतनी मग्न हो गई थी और फूल बीन रही थी तो सारा पल्लू जो है वो कांटे में छुप गया था, मतलब फंस गया था। तो वो यहाँ से निकालते तो यहाँ फंसता है, यहाँ निकालते यहाँ फंसता है, उसमें चक्र के अंदर क्या होता है, वो फूल सब नीचे गिर जाते हैं मट्टी में, और फिर भी वो प्रयास कर रही है, कपाल पे पसीना आ रहा है क्योंकि डंडे की आवाज़ पास पास आ रही है, क्योंकि मूली माली का डंडे की आवाज़ दूर थी, वो पास पास में आ रही है। तो गोपियाँ वहाँ बुला रही, श्री जी राधे भागो आ रहा है, और ये डर के मारे कोशिश कर रही है भागो यहाँ से, लेकिन तब तक वो सामने आके ठक खड़ा हो जाता है और इसे कमर पे हाथ रख के पूछता है, तुम लोग यहाँ पर हो जाते हो, किसको पूछ के आते हो, तुमने यहाँ पर कोई पौधा लगाया है? नहीं लगाया है। तुमने कभी पानी दिया उसको, कभी मेंटेन किया उसको, तुम्हारा बगीचा है ये? सबका उत्तर नहीं ऐसा है, तो तुम किस अधिकार से यहाँ पर आते हो? हम लोग आने के पहले फूल सब गायब हो जाते हैं, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मालिक के पास ले जाऊंगा और दंड दूंगा तुमको। तो गोपियाँ सब भाग गई ऑलरेडी, अकेली राधा रानी, इतना सब बोलने के बाद में अचानक माली हंस देता है, अपना पेटा निकालता है, मूछ भी निकाल देता है, तो पता चलता है कि वो कृष्ण थे। ये वहाँ की एक लीला है। दूसरी लीला ऐसी है कि राधा रानी जब फूल बिन रहे हैं और फूल बिन के हो जाता है उनका, लेकिन सब कपड़े उनके अटक जाते हैं, तो माली आता है और बड़े प्रेम से सबके कपड़े जो है ना अटके हुए कांटे में निकाल लेता है सबके, और सब गोपियाँ उसको देखती हैं और चली जाती हैं, और आगे जाके बोलती हैं कि कांटे में फंसा हुआ वस्त्र तो निकाल दिया, फिर हमारा दिल लटका दिया। सब कहते हैं कि हमारा सबका दिल तो अटक गया, तो राधा रानी कहती है उसका दोबारा दर्शन करने का दिल हो रहा है, सखिया भी कहती है उसको दोबारा मिलना चाहिए, तो वापस जाके उसको मिलती है। तो बहुत देर उनकी बातें होती है, क्यों आते हो तुम लोग यहाँ पर, माली पकड़े, माली के रूप में पकड़ूंगा तो दंड मिलेगा आपको, ऐसे बातें चलती रहती है। उतने में हाथ ऊपर करते ना बात करते ऐसे ऐसे, तो कमर में मुरली लगाई मिलती है उसको, तो ललिता तुरंत मुरली खींच लेती है उसकी और भागने लगती है, तो पहचान लेते कि ये कृष्ण माली बनकर हमको उल्लू बना रहे हैं। तो फिर उसको कैसे भी करके कृष्ण उनको मिलते हैं और कहते हैं मुरली वापस कर दो मेरी। तो वापस कर देते हैं। और एक लीला में क्या होता है कि ये सब कुछ होते रहता है उधर फूल वन में, रोज ये लीला होती है। तो जब ही राधा रानी उनको पहचान लेती है कि ये कृष्ण है, तो बोलते अरे तुम हो, मैं तो डर ही गई थी बहुत, तो अभी क्या करना है? बोले अभी ये जो फूल नीचे गिरे उसका क्या करें, रोज क्या करते हो? तो रोज उसको इकट्ठा करते हैं और जमुना जी में जाके उसको धोते हैं और फिर घर ले जाते हैं। चलो फिर जमुना जी जाएंगे धोएंगे फूल, तो क्या हुआ, उठाएंगे और धोएंगे। तो कृष्ण को राधा रानी कहती है कि आपके साथ में कैसे अकेले जाएंगे, सब देखेंगे ना, खबर मिलेगी सबको तो कंप्लेंट जाएगी कि कृष्ण के साथ में वन में मिले ये लोग, छुप छुप के वन में मिलते हैं फूलों के बहाना करके, मैं नहीं आ सकती आपके साथ में। तो कृष्ण कहते कोई बात नहीं, यमुना जी को यहाँ बुला लेते हैं। तो पैर से गड्ढा करते हैं, मुरली से गहरा बना देते हैं और यमुना जी को आह्वान करते हैं। तो यमुना जी वहाँ पर आके अपना पानी भर देती है, पूरा बड़ा कुंड बनता है, कुसुम सरोवर, फूल कुसुम, कुसुम सरोवर। और उसमें फिर राधा रानी और कृष्ण मिलकर वो फूल धोते हैं, स्वच्छ करते हैं। पर अभी राधा रानी को देर हो रही है, जाना है ना घर पे। तो कृष्ण कहते हैं थोड़ी देर रुको ना आप, हाँ ठीक है, तो मैं आपके बालों का श्रृंगार करना चाहता हूँ इन फूलों से। तो फिर राधा रानी के बालों का श्रृंगार कृष्ण भगवान किनारे में बैठ के करते हैं। एक लीला है, बाकी में सभी गोपियाँ भी साथ में हैं, सबके साथ लीला हो रही है और सबके सामने फिर कृष्ण कहते हैं कि चलो हम लोग यहाँ धोएंगे फूल और मैं राधा रानी के बालों का श्रृंगार करना चाहता हूँ। तो राधा रानी हाँ कर देती है, तो सब गोपियाँ मिलकर कृष्ण को हेल्प करती हैं और उनके हेल्प से कृष्ण भगवान उनके बालों को संवारते हैं। उतने में सब गोपियाँ कहते हैं अरे तुम्हारे बालों के चक्कर में इधर सब हमारा साजी का पूजन लेट हो गया। तो कृष्ण कहते कोई चिंता मत करना, आपका साजी में कोई लेट नहीं होगा, आप जाओ आराम से घर पे। और कृष्ण जो है उनके पहुँचने के पहले उनके घर में पहुँचते हैं सखी के रूप में और जाकर सबके सखियों के घर में जाकर साझी बना देते हैं और गायब हो जाते हैं। जब ये आते हैं तो बहुत सुंदर साझी उनके घर में रेडी होती है। ऐसा जाकर कृष्ण भगवान अलग अलग रूप में जाकर गोपी बनकर श्यामा सखी बनकर गोपियों के घर में साझी बनाते हैं गोपियों को प्रसन्न करने के लिए। और फिर साझी पूजते समय सभी गोपियाँ कृष्ण के लिए प्रार्थना करती हैं कि इनके साथ हमारा विवाह हो जाए। तो ये कुसुम सरोवर जो है ये राधा रानी की श्रृंगार स्थली है, राधा रानी का श्रृंगार कृष्ण भगवान करते हैं। सो इसका आचार्य अर्थ बताते हैं कि जब हम कृष्ण के लिए योग्य हो जाते हैं तो कृष्ण हमारा प्रेम के फूलों से श्रृंगार करते हैं, यानी हमको प्रेम देते हैं। हम लोग जब दुनिया में आसक्त रहते हैं तो हम कृष्ण के योग्य नहीं रहते हैं, लेकिन जब दुनिया की आसक्ति हम छोड़ देते हैं, कर्तव्य निभाते हैं लेकिन छोड़ देते हैं और कृष्ण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तो कृष्ण भगवान फिर प्रसन्न होकर जैसे राधा रानी के बालों में फूलों का श्रृंगार किया वैसे हमारा भी प्रेम के फूलों से श्रृंगार करते हैं। तो हम प्रेम के फूलों के द्वारा सुंदर दिखते हैं बहुत और भगवान के प्रेम के लायक हो जाते हैं। और इसमें कुसुम वन के अंदर एक अशोक वन है, अशोकों का पेड़ों का वन है। तो नारद मुनि जब एक बार आए थे इधर तो ध्यान में बैठे, वो तो ध्यान में बैठे तो क्या देखते हैं कि कुसुम वन के अशोक वन के जितने भी अशोक के पेड़ हैं वो सब पेड़ गोपी बनकर श्रृंगार करके रास लीला में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिस पेड़ के नीचे वो स्वयं ध्यान के लिए बैठे हैं वो पेड़ भी श्रृंगार करके लीला में प्रवेश कर रहे हैं और कोई भी पेड़ वहाँ बचा नहीं है। ये अद्भुत साक्षात्कार नारद मुनि को उधर कुसुम सरोवर के पास में हुआ है कि ब्रज के जो पेड़ हैं वो सब राधा रानी स्वरूप हैं या गोपी स्वरूप हैं या कल्प वृक्ष हैं या और क्या बताया था चौथा, राधा रानी स्वरूप हैं, गोपी स्वरूप हैं और कल्प वृक्ष हैं और क्या आवाज नहीं आ रही, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि वहाँ पर तप कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि जीवन में ऐसी कामना करते हैं कि हमें इस जीवन के अंत में ब्रेड के ब्रिज के अंदर पेड़ पौधे का जन्म मिले। पेड़ पौधे के जीवन में क्या लाभ है, हमको तो अच्छा नहीं लगेगा पेड़ पौधा बनना, लेकिन ऋषि मुनि बोल रहे हैं पेड़ पौधा बनना है, क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो पाँव से भोजन करते हैं, है ना। उनका नाम क्या है? पादप। पादप यानी उनका भोजन जो है वो रूट्स से आता है, खड़े हैं ना तो उनको पाँव यानी रूट्स वहाँ से भोजन मिलता है उनको। तो वो रज से जुड़े हुए हैं, ब्रज के रज से, एक कनेक्शन, एक कारण है उसका। दूसरा कारण है कि पेड़ जो होता है ना, कोई भी पेड़ हो, शहर का हो, गांव का हो, सब किधर भी, वो पेड़ के अंदर एक शक्ति होती है। हाँ, क्या शक्ति होती है? कि वातावरण में जो चेतना चल रही है, जो लीला चल रही है, जो काम चल रहा है, उसका प्रेम का भाव है या तो रजोगुण का भाव है या तो काम वासना का भाव है या तो शराब के अड्डे में तमोगुण का भाव है, तो उसका जो एसेंस है ना, एसेंस वो स्वीकार कर लेते हैं। और उनके पास जो भी आता है आसपास, उनको वो दे देते हैं भाव। और पेड़ के अंदर एक शक्ति होती है कि आपको जो दिखाई नहीं पड़ता है वो पेड़ को दिखाई पड़ता है। तो ब्रज में निरंतर कृष्ण की प्रेम लीलाओं का आयोजन होते रहता है। कॉन्स्टेंटली देर इज लविंग पास्ट टाइम्स बींग इनेक्टेड इन वृंदावन धाम। तो नित्य लीला सबको दिखाई नहीं पड़ती है, हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती है। जो प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचन है ना, जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उनको भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। तो ऋषि मुनि जब प्रेम प्राप्त करके पेड़ बन जाते हैं तो उनको निरंतर भगवान की लीलाओं का दर्शन होते रहता है, इसलिए वो ब्रज में आकर पेड़ बनना चाहते हैं। पांडव थे ना, पांच पांडव, वो भी राधा कुंड के किनारे, श्याम कुंड के किनारे भजन कर रहे हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने जीर्णोद्धार करने का प्लान किया तो काफ़ी पेड़ वेड़ तोड़े लंबा करने के लिए, तो जब भी वो श्याम कुंड के आसपास पेड़ की कटाई कर रहे थे तो एक दिन रात में युधिष्ठिर महाराज स्वप्न में आए रघुनाथ दास जी के। उन्होंने बताया श्याम कुंड के किनारे जो पांड उसका नाम और गोपियों का स्नान करने का घाट है, वो राधा रानी रोज 11:48 पर दोपहर को अपने गिनी चुनी 64 सखियों के साथ में उस कुंड पे, उस घाट पे स्नान करती है, हरे कृष्णा स्नान करते हैं। तो उसके पास ये पांच पांडव पांच पेड़ के रूप में भजन कर रहे हैं। तो वो दिखाते सपने में कि ये पांच पेड़ हम लोग हैं, इधर हमको काटना मत, हम लोग यहाँ पर भजन कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रूफ है, इसलिए राधा कुंड चौकोनी है ऐसा और श्याम कुंड जिगजैग है ऐसा, क्योंकि वो पेड़ों को बचा के उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया श्याम कुंड का। तो हमने वो जीवंत युधिष्ठिर महाराज के पेड़ का भी दर्शन किया है, और तब भी ये चार पेड़ जो खत्म हो चुके थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का पेड़ भी समाप्त हो गया है, लेकिन उसका डेड बॉडी है अभी तक, उधर सूखा हुआ पेड़ अभी भी है। तो ये प्रूफ है कि साधु संत लोग जो हैं वो ब्रज में आकर पेड़ के रूप में ध्यान करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं। हो सकता है कि पेड़ के रूप में बहुत अच्छा भजन होता होगा ब्रज में, इसलिए सब ऋषि मुनि भी तमन्ना करते हैं कि हम ब्रज में पेड़ बन जाएं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जब पश्चाताप करते हैं कि मेरे बच्चे अपने आपके चुराए, मैंने ग्वाल बाल चुराए, गाय बछड़े चुराए, आपका अपराध किया, आपका वियोग कर दिया मैंने, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, क्षमा कर देना, और हो सके तो लता पता का जन्म देना ब्रज में। लता पता का जन्म देना मतलब लता पता क्यों? क्योंकि लता पता जो है ना वो सबसे निचली योनि है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, काटो वोटो कुछ भी करो कुछ बोलने का शक्ति नहीं है। इट्स सपोज टू बी द लोएस्ट ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो वो सबसे तुच्छ जन्म जो है लता पता का वो दे देना। और अगर ब्रज में लता पता बनने का भी मेरा अगर योग्यता नहीं है तो ब्रज के बाहर से जो रास्ता अंदर आता है ब्रज में उसका पत्थर बना देना, ताकि भक्तों के चरणों की धूली हमारे पर पड़ेगी तो प्रेम का रहस्य हमको भी पता चलेगा। तो अशोक वन में नारद मुनि को ये साक्षात्कार हुआ। फिर हमने आपको पहले बताया था, एक उद्धव जी की कहानी में पूरा बताया ना डिटेल में, तो अभी संक्षेप में उसका उल्लेख करते हैं कि उद्धव जी कुसुम सरोवर के किनारे पे गुल्मलता के रूप में विराजमान है। तपस्या करके उद्धव जी वहाँ पर गुल्मलता नाम का घास बने हुए हैं, अभी भी वहाँ रहते हैं। और जब रानियाँ जो यमुना देवी के द्वारा निर्देश हुआ ना उनको, जाओ उद्धव जी को मिलो, कुसुम सरोवर में मिलेंगे आपको, तो भगवान की सब रानियाँ जो वहाँ पर आई हैं और उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया है, और भगवान की रानियों के मुख से हरिनाम कीर्तन सुनकर उद्धव जी गुलमलता के रूप से प्रकट होकर मनुष्य रूप में आए हैं। वहाँ पर एक संकीर्तन की महिमा वहाँ पर कुसुम सरोवर में गाई जाती है कि संकीर्तन इतना पावरफुल होता है भगवान के नामों का कीर्तन कि वो करने से साक्षात भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। आउट ऑफ नथिंग कृष्णा विल बी मैनिफेस्टेड। तो उद्धव जी भी घास के पत्ते के रूप से व्यक्ति रूप में प्रकट हो गए। उसके बाद में उद्धव जी ने कृष्ण की पत्नियों के लिए 30 दिन तक भागवत कथा की है। उद्धव कुसुम सरोवर के किनारे पे और 30 दिन की भागवत कथा सुनने के पश्चात सब रानियां अपने अपने धाम में चली गई। रानियों का उद्धार हो गया है। तो उद्धव जी ने घास का पत्ता बनने के लिए तपस्या कहाँ की है? कुसुम सरोवर के बाजू में। और जहाँ पर तपस्या की है उसका नाम है उद्धव कुंड। जब तपस्या की थी तभी कुसुम सरोवर था, उद्धव कुंड नहीं था। तो वहाँ पर तपस्या की कुसुम सरोवर के किनारे, तो उद्धव कुंड किसने बनाया? ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मेरी कथा में। किसने बनाया? वज्रनाभ ने बनाया। उद्धव की तप की हुई स्थली के मेमोरी में, स्मृति में उन्होंने वहाँ पर कुंड बनाया है, वह उद्धव कुंड। और उद्धव कुंड के पास उद्धव बिहारी जी महाराज, राधा उद्धव बिहारी जी का मंदिर है। और ऐसे कहते हैं कि राधा उद्धव बिहारी जी के पास जाने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। खास करके किसको पुत्र नहीं है तो वहाँ पर कुछ विधि करते हैं और उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उद्धव जी ने वहाँ पर एक ऐसा आदर्श स्थापन किया है कि हमारा पद जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो पद के आधार पर भगवान नहीं प्राप्त होते हैं, भगवान भक्ति और प्रेम के आधार पर प्राप्त होते हैं। तो उद्धव जी ने अपना पद वद सारा अधिकार छोड़कर वहाँ पर घास का पत्ता बनने के लिए तपस्या की है। तो भगवान के लिए हम कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए, अपना पद, अपना पोजीशन, अपना रिलेशन, अपना अधिकार, अपना सौंदर्य, अपना धन संपत्ति, रिलेशन, है ना, सब कुछ भगवान के लिए त्याग कर दिया। यहाँ तक कि भगवान का सानिध्य भी त्याग कर दिया भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। और फिर घास का पत्ता बनकर गोपियों के चरणों की रज प्राप्त की और फिर भगवान का प्रेम प्राप्त किया उनके कृपा से, गोपियों के चरणों की रज की कृपा से। आप में से कितने लोगों ने अष्टावक्र मुनि का नाम सुना है? अष्टावक्र मुनि एक बहुत बड़े तपस्वी मुनि थे। उनका शरीर ना वो ऑक्टोपस की तरह था, 8 जगह पर बैंड था उसको, लेकिन बहुत बड़े महान तपस्वी थे वो। तो उनकी गर्ग संहिता में भी कहानी आती है। तो अष्टावक्र मुनि ने कुसुम सरोवर के किनारे पे तप किया है और कुसुम सरोवर के किनारे तप करने के बाद में अष्टावक्र मुनि को भगवान ने दर्शन दिया है और भगवान के दर्शन आशीर्वाद से अष्टावक्र मुनि वहीं से गोलोक धाम चले गए। तो ये अष्टावक्र मुनि की भी तपस्थली है कुसुम सरोवर। उसके बाद में एक बहुत सुंदर बात आपको समझना चाहिए कि बलराम जी और राधा रानी, इनके बीच में बहुत बड़ा सुंदर रिश्ता है। एक तो बलराम जी के छोटे भाई की वो प्रेयसी है, तो कृष्ण भगवान कभी भी बलराम जी के सामने राधा रानी को नहीं मिलते। लेकिन जब गोवर्धन लीला हुई सब लोग इकट्ठा हुए ना, गोपियाँ भी आई, राधा रानी भी आई, बलराम भी आए, ग्वाल बाल भी आए, माता पिता भी आए, सब लोग आए। वो एक ही लीला ऐसी है जिसमें सभी रसों के लोग एकत्र हुए, वात्सल्य वाले माता पिता भी इकट्ठा हुए, माधुर्य वाले गोपियाँ भी इकट्ठा हुई, सख्य वाले ग्वाल बाल भी इकट्ठा हुए, शांत रस वाले गाय बैल बंदर वो भी सब इकट्ठा हुए, सब लोग इकट्ठा हुए। तो सभी रसों के भक्तों का सभी प्रकार का आदान प्रदान वहाँ पर हुआ है। गोपियों का गोपियों से हुआ है, गोपियों का ग्वाल बालों से हुआ है, और ग्वाल बालों का माता से हुआ है, माता से गोपियों का हुआ है, सबका इंटर कनेक्शन हो गया है उसमें। वैसी एक ही ब्रज की लीला है जिसमें सब प्रकार के भक्त एकत्र हुए हैं, सब प्रकार से भक्त ने एकत्र होकर एक दूसरे से आदान प्रदान किया है। तो उस समय राधा रानी सामने खड़ी है और राधा रानी को कृष्ण देख रहे हैं, और कृष्ण को देखते हुए पता चलता है कि बलराम जी मुझे देख रहे हैं कि मैं राधा रानी को देख रहा हूँ। तो वो शर्म आती है, तो उनको नीचे देखते हैं, नज़र झुका देते हैं। इसलिए श्रीनाथ जी भगवान जो है वो नीचे देख रहे हैं, बलराम जी के होने की मर्यादा को संभालते हुए राधा रानी की नज़रों में नहीं देख रहे हैं। तो राधा रानी का उनका विशेष रिश्ता है। ऐसे हमारे रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर राधा रानी अपने सखियों को लेकर चल रही है और रास्ते में अगर पौधे गौर वर्ण के दिखाई पड़ते हैं तो राधा रानी को पता चलता है कि यहाँ से बलराम जी अभी अभी गए हैं, तो उनके द्वारा सम्मान के लिए वो अपना रास्ता बदल लेती है। और जब बलराम जी निकलते हैं और उनको रास्ते में गौर वर्ण के पौधे मिलते हैं तो वो समझते हैं कि राधा रानी अभी यहीं से सखी को लेकर चली गई है, तो उनकी लीला में मुझे बाधा नहीं डालना चाहिए, इसलिए वो रास्ता बदल लेते हैं। दे रिस्पेक्ट ईच अदर, क्योंकि उनको पता है कि राधा रानी मेरे सामने संकोच में आएगी और मैं भी राधा रानी के सामने संकोच में आएंगे और कृष्ण भी संकोच में आएंगे तो लीला नहीं करेंगे। लेकिन उनको लीला देखने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन वो लीला के उनके सामने नहीं होती, क्योंकि वो बड़े हैं, जेठ हैं, और जेठ के सामने कोई बहू और लड़का लीला नहीं करते हैं। तो बलराम जी का ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गोवर्धन में एक जगह है जिसका नाम है ढोका दाऊजी। क्या बताया? ढोका मतलब क्या? दंडवत करना, ढोक ढोक देना। अभी मारवाड़ी लोगों को पता है ढोक देना मतलब प्रणाम करना, बेटा ढोक दो, बेटा ढोक दो, अंकल आया ढोक दो, ढोक देना मतलब प्रणाम करना। तो कृष्ण भगवान गोवर्धन के आगे चंद्र सरोवर में रास रचा रहे हैं और बलराम जी को ये रास देखने की बहुत इच्छा है, लेकिन संकोच भी है कि मैं आऊँगा तो रास बंद हो जाएगा, मैं आऊँगा मुझे वो देखेंगे तो सब बंद हो जाएगा। तो उनको बिना पता चले कि मैं आया हूँ उनका रास चलता रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, गोवर्धन में आते हैं, गोवर्धन में चढ़ते हैं, देखते हैं अरे लीला चल रही है, तुरंत ढोक देते हैं, मतलब ढोक पोजिशन में आ जाते हैं, छुप जाते हैं एक तरह से, और आँखें रखती सामने और रास चलते रहता है। तो वो जब ढोक देकर छुप छुप के देखते हैं तो उनका शरीर जो है वो स्तंभित हो जाता है, इट बिकम स्टंड इमूवेबल। तो वो ढोक दाऊजी का मंदिर जो है वो आप भी आनेवर के आगे गोविंद कुंड के आगे गुलाबी रंग का मंदिर है, गोवर्धन के ऊपर है, वहाँ पर एक अजीब प्रकार की मूर्ति है, बलराम जी जो है वो ढोक के पोजीशन में खड़े हैं, मतलब बैठे हुए हैं। हम लोग वहाँ जा सकते नहीं क्योंकि वो पर्वत पर है मंदिर वो, लेकिन जब भी वो ढोक दे रहे थे तो उनका मुकुट जो है ना वैसा निकल गया, क्योंकि आप झुक गए ना, झुक गए तो टोपी गिरती ना, कभी कभी सर की टोपी गिर जाती है, पेठा भी गिर जाता है, तो वो जो मुकुट था उनका वो लुढ़क गया और एक शिला पर आ गया। तो वो जो मुकुट था वो भी ऐसा भाव में था कि मुकुट के भाव के प्रभाव से वो मुकुट जो है ना उसने शिला को पिघला दिया और मुकुट शिला में घुस गया। तो वो है मुकुट शिला, उसके अंदर आज भी मुकुट के निशान हैं और मुकुट उसके अंदर है, और उसके बाजू में अंदर मंदिर के अंदर बलराम जी की ढोक दाऊ जी की मूर्ति है। ऐसा सुंदर सुंदर लीला है। तो ये बलराम जी का कुसुम सरोवर में मंदिर है, इसका कारण क्या है बताइए? उसके आगे इनका कहीं मंदिर नहीं है, इस तरफ मंदिर है ढोक दाऊ जी का है, आगे भी स्थान है बलराम जी के, लेकिन कुसुम सरोवर पे लास्ट मंदिर है बलराम जी का। इसका कारण यह है कि कुसुम सरोवर के आगे राधा कुंड घेरा शुरू होता है। घेरा का मतलब क्या है? हाँ, बाउंड्री एरिया, उसको घेरा कहते हैं, घेरा, सेवा कुंज घेरा। सेवा कुंज घेरे के अंदर दामोदर का मंदिर है, श्याम सुंदर का मंदिर है, नूपुर स्थली है, सेवा कुंज है, इस सेवा कुंज घेरा यानी दायरा, इस एरिया। तो कुसुम सरोवर के आगे राधा कुंड घेरा शुरू होता है और कुसुम सरोवर से राधा कुंड तक राधा कुंड का ही प्रभाव है पूरा। राधा कुंड जो इतना महत्वपूर्ण स्थान है, राधा कृष्ण के अत्यंत उत्कट लीलाओं की स्थली है वो, वहाँ पर राधा और कृष्ण जो है अति अति उत्कट प्रेम लीला करते हैं और राधा रानी अति अति दया में रहती है, वहाँ पर अति अति करुणा में रहती है। तो राधा और कृष्ण की अति उत्कट लीला स्थली में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए बलराम जी उसके आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं बैठकर छुपकर राधा कुंड की लीलाओं को दर्शन करते रहते हैं। मैंने पूछा था कि हाँ बलराम जी की मूर्ति क्या कर रही है, मतलब व्हाट इज़ द पर्पस, तो वहाँ के भक्तों ने बताया था कि बलराम जी का भाव यह है कि राधा कुंड और श्याम कुंड के अंदर जो लीला चल रही है उसको उनको डिस्टर्ब किए बिना गुप्त रूप में देखना है, इसलिए बलराम जी का भी मंदिर है। कुसुम सरोवर पे उद्धव जी का भी मंदिर है, यहाँ पर उद्धव जी दिखा रहे हैं बैठकर तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार से इस कुसुम सरोवर के किनारे पे और एक मंदिर है, इसका नाम है राधा वन बिहारी। आप लोग गए कुसुम सरोवर के एंड में है, कोने में है, तो वहाँ पर वन बिहारी जी का मंदिर है और उसका बहुत लंबा इतिहास है। 250 साल पहले वहाँ पर एक बुजुर्ग ब्रजवासी सेवा करते थे, बाबूलाल शर्मा, और हमारा भाग्य रहा है कि हमारा उनका मुलाकात भी हुआ है। तभी वो बहुत बड़े उम्र के थे, 1986 की बात है, और उन्होंने कम से कम अपनी उम्र के 75 साल कुसुम सरोवर में फूल बिनकर उनकी मालाएं बनाकर वन बिहारी की सेवा की थी। मतलब फूल सखी क्या करती है, फूल सखी फूल बिनती है, माला बनाती है, भगवान को अर्पण करती है, उसको नाम फूल सखी कहते हैं। तो एक फूल सखी के भाव से बाबूलाल शर्मा ने अपने उम्र के 7 साल से उम्र से वहाँ पर वन बिहारी जी की सेवा की है। राजा एक बार वहाँ घूमने आए थे राजस्थान के, और देखा कि वन बिहारी की सेवा में कोई नहीं है, तो घूमते घूमते किसी के घर पे गए, वहाँ पर एक लड़का दिखाई पड़ा। उनके माता पिता को पूछा कि इसको ले सकते हैं क्या सेवा में, तो राजा की इच्छा थी तो बड़ी कृपा हुई, तो राजा उसको ले गए और कहे यहाँ पर रहो, तुम्हें हम लोग अपना तनख्वाह दे देंगे, आप यहाँ रहो और सेवा करो। तो बड़े ही प्रेम से उन्होंने 75 अपने उम्र के साल 75 ईयर्स वहाँ पर फूल की सेवा की। उसका शांता देवी से उनका विवाह हुआ, एक बच्चा हुआ तो गुजर गया, बाद में बच्चे नहीं हुए, दोनों ही रहे वहाँ पर, दोनों ने बाप बढ़िया बढ़िया सेवा की। और हमारी पहली यात्रा थी 1986 वाली, तब मैं भी जस्ट मेरा मैरिज हुआ था, तो मेरी बीवी थोड़े बीमार हो गई परिक्रमा में, गोवर्धन की परिक्रमा में, तो हम लोग मैं पीछे रह गया उसके साथ में, थोड़ा उसको रेस्ट करने की जगह चाहिए थी, एक मंदिर दिखा तो उसके अंदर चले गए, तो वो वन बिहारी जी का मंदिर था। तो हम वहाँ बैठे रेस्ट लिया, तो ये बाबा आए बाबूलाल शर्मा और ये पूरी कहानी सुनाई, कैसे कृष्ण भगवान माली बनकर आते हैं, डंडा लेकर आते हैं और फिर राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, पूरी कथा सुनाई हमको। फिर थोड़ा अच्छा लगा, फिर मैं लेके वहाँ पे चला गया था। उसके बाद में स्कॉटलैंड के एक महाराज और भक्त लोग वहाँ पर आए थे, उनको ये स्थान बड़ा अच्छा लगा, इस्कॉन स्कॉटलैंड। तो वहाँ पर क्या अद्भुत कहानियाँ हैं, वो शांता देवी जो है ना, उनके पति जो बाबूलाल शर्मा है वो गुजर गए, शांता देवी अकेली रह गई। शांता देवी को स्वप्न आया एक दिन कि आकाश से एक परी आएगी उतर कर और तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी देखभाल भी करेगी और बनबारी की सेवा में भी सहायता करेगी। ये स्वप्न देखा अभी, समझो आज देखा रात को। तो आज के दिन में राधा कुंड से एक जीप आई और जीप में से एक लड़की उतरी और उतर के अंदर आई और बोली मैया मैं आपके सेवा में आई हूँ और यहीं रहूँगी। और वो कौन है, वो पालिंद्री माता जी हैं जो अभी कम से कम 20 साल हो गए रहेंगे, 20 ज़्यादा साल हो गए रहेंगे, छोटी सी उम्र की थी। और अपने गुरु महाराज के आज्ञा से गुरु महाराज ने कहा कि ये माता जी कि आपको सेवा करना है, वन बिहारी की सेवा करना है। उस बाद में वो स्वामी जी गुजर गए, कहाँ पता नहीं कहाँ गए मालूम नहीं, लेकिन उनकी आज्ञा से ये माता जी अभी भी वहाँ सेवा कर रही है। और जब वो स्वामी जी थे तो उनके बहुत सारे भक्त स्कॉटलैंड से आकर वहाँ पर रहते थे, 8-10 भक्त लोग। स्वामी जी चले गए तो सारे भक्त चले गए, एक ही भक्त रह गया, वो है नित्यानंद महाजन प्रभु, वो अभी भी वहाँ रह रहे हैं। और ये लड़की गुरु जी की आज्ञा से जैसे हवाई जहाज़ में आकाश से विमान से उतरी, वैसे ये जीप में से उतरी और अभी भी वहाँ रह रही है। और शांता देवी जो है माँ कहते हैं उन्हें, वो आज कम से कम 85 साल की उम्र है उनकी, बहुत वृद्धावस्था है। तो फिर पिछले 7-8 साल के पहले राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से उनकी उन्होंने बहुत विनती की कि हमारे मंदिर की देखभाल करो, हमारे पास कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग बूढ़े हैं अच्छे। तो बाकी सारे मंदिरों ने मना कर दिया, फिर राधा गोपीनाथ मंदिर ने उनको अपना आशरा दिया, तो फिर ट्रस्ट बनाया गया। अभी इसी महीने पिछले महीने में जीवी से प्रेमांजन प्रभु जो है वहाँ पर उन्होंने भी चार्ज ले लिया है और राधा वन बिहारी की वहाँ पर सेवा में 4-5 भक्त लोग रह रहे हैं। और अभी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है तो वृंदावन में जाके आराम करेगी, परिंद्री भी उनके साथ में रहेगी, उनकी सेवा करेगी और मंदिर की देखभाल जो है पूरी तरह से हम लोग करेंगे। राधा बन बिहारी जी महाराज, ऐसा उसका इतिहास है। और मैंने आपको बताया था उस दिन का कहानी में कि नारद मुनि जी को यहाँ पर गोपी स्वरूप प्राप्त हो गया था। नारद ही या गोपी, याद है कि नहीं याद है आपको? आपको बताया क्या थे, आप लोग थे कि नहीं थे? नारद मुनि रावल में गए थे राधा रानी के जन्म के समय पर, तो राधा रानी ने उनको दर्शन दिया था। तो नारद जी ने कहा कि हमको अष्ट सखी का दर्शन करना है। तो राधा रानी ने कहा कि कुसुम सरोवर चले जाओ, वहाँ पर आपको मेरे साथ 8 सखियों का दर्शन होगा। तो वहाँ पर नारद मुनि जब गए हैं तो माधवी गोपी और वृंदा गोपी, दो गोपियाँ उनको मिली और उन्होंने नारद मुनि को दक्षिण कोने में कुसुम सरोवर में स्नान कराया। स्नान करने के बाद में नारद मुनि को गोपी का शरीर प्राप्त हुआ, नारदी गोपी। उस नारदी गोपी का इन दोनों गोपियों ने मिलकर बहुत श्रृंगार किया बढ़िया, और गुप्त ब्रिज में से चलाकर उनको जो गुप्त कमल है वहाँ पर, बहुत बड़ा अरेंजमेंट है कुसुम सरोवर के ऊपर, दिव्य कमल है सहस्त्र पंखुड़ियों का, उसके बीच में बहुत बड़ी जगह है, उसके रत्न सिंहासन है, उसमें राधा और कृष्ण विराजते हैं। तो वो गुप्त स्थान का दर्शन कराया उनको पहले, फिर गुप्त ब्रिज में से उनको चलाकर हाथ पकड़कर सुंदर गोपी को लेके गए, हाथ में चमर दिया, और वो कमल के पहले 8 पंखुड़ियों पर 8 सखियाँ अलग अलग रूप से भगवान की सेवा कर रही थी, जुगल जोड़ी की सेवा कर रही थी। तो उनका 8 गोपियों समवेत राधा श्याम सुंदर का सिंहासन में बैठे हुए उन्हें दर्शन किया और चमर सेवा की। तो उसके बाद राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, वो नारदी गोपी से कहती है अब तुम यहीं रहो ब्रज में और हमारे विषय में लिखो। तो कहते हैं कि आपके पूजा के विषय में लिखने के लिए बहुत समय लगेगा, मुझे दक्ष राजा का शाप है कि मैं 3 दिन के ऊपर कहीं रह सकता नहीं हूँ। तो उन्हें कहा दक्ष राजा का शाप जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में था, ये मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, ये वृंदावन धाम मेरा घर है, ये यहाँ पर राजा प्रजापति दक्ष का शाप लागू नहीं होता, आप यहाँ जितना चाहे उतना रहो, आराम से रहो, भजन करो, और मैंने लिखा हुआ ग्रंथ भी लिखो, कहा हुआ ग्रंथ भी लिखो। तो फिर उनको वहाँ से फिर माधवी गोपी वृंदा गोपी ने फिर बुलाया है, वापस दक्षिण कोने में स्नान कराया है। नारदी गोपी का रूपांतर नारद मुनि में हुआ है, वहाँ वीणा बजाते बजाते थोड़ा आगे गए हैं और वहाँ पर एक स्थान है नारद कुंड, 1 किलोमीटर दूर है, वहीं पर निवास किया और नारद भक्ति सूत्र का लेखन किया उन्होंने। और भी एक कथा ऐसे आती है कि वहाँ पर आए नारद मुनि तो वृंदा गोपी उनको मिली और हाथ पकड़कर एक बहुत बड़े कमरे में लेके गई, उस कमरे में बहुत सारी सखियाँ बैठी हुई थी। तो वृंदा देवी ने राधा रानी को उनको मिलाया, तब तक ये नारदी गोपी बन चुके थे। तो वृंदा देवी ने राधा रानी को मिलाया और राधा रानी ने हाथ पकड़कर अंदर के कक्ष में लेके गई, और अंदर के कक्ष में तो वहाँ पर राधा कृष्ण अष्ट सखियाँ बैठकर संवाद कर रहे थे, वहाँ पर बहुत प्रेम का संवाद हुआ, बहुत देर तक नारदी गोपी को वहाँ पर बैठने का मौका मिला। उसके बाद फिर वृंदा गोपी उनको बाहर लेके आई और फिर उनको विदा किया, तो फिर नारद मुनि बन गए वो। ऐसा अद्भुत स्थान है वो कुसुम सरोवर, साधारण स्थान नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए थे तो वो सबसे पहले मथुरा में आए, उसके बाद काम्यवन गए, काम्यवन के बाद नंदगांव गए, नंदगांव में आकर पावन सरोवर में स्नान किया, फिर पहाड़ पर चढ़े, फिर यशोदा नंद बाबा कृष्ण की मूर्तियों से उनका मुलाकात हुई और उन्होंने प्रकट किया उनको। उसके बाद वो गोवर्धन आए और गोवर्धन में उनको कृष्ण का दर्शन हुआ तो बेहोश हो गए, फिर वो कुसुम सरोवर आए और कुसुम सरोवर में उन्होंने स्नान किया है चैतन्य महाप्रभु ने, और वहाँ पर उन्होंने अशोका ट्री जो है ना, अशोका वन में जाकर उसको आलिंगन दिया हुआ है गोपी भाव में जाकर। और एक आखिरी लीला वहाँ पर ऐसी है, वृंदावन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आपने सुना है, ये बहुत बड़े आचार्य हुए हैं और ये सखी का अवतार थे, तो इन पर बहुत लोगों का द्वेष था क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों का प्रकाश किया, तो उस समय के साधुओं को जरा गुस्सा आया इनके ऊपर कि हमारे अलावा कुछ बता रहे हैं। तो बार बार वाद विवाद करने के बाद भी ये अपने तत्व पर अड़े रहे, ही वुड नॉट बज फ्रॉम हिज फिलोसफी। सो एट दैट टाइम उन्होंने तय किया कि विश्वनाथ जी का हम लोग खून करेंगे। कैसे करेंगे? कि ये लोग ये रोज़ सुबह अंधेरे में जाकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। और गोवर्धन की परिक्रमा में जब कुसुम वन आता है उस समय, तो कुसुम वन बड़ा घनघोर जंगल हुआ करता था। तो वो जब उससे उसकी तरफ परिक्रमा करते करते आएंगे तो जंगल में हम लोग उनको वध कर देंगे। तो सब कुछ सेटिंग हो गया उनका, रात से ही बैठे ये भोर पहले सुबह 3 बजे जाकर परिक्रमा करते करते जब कुसुम सरोवर के अंधेरे में घुसे तो ये तलवार वगैरह लेकर उनको मारने चले गए। तो अचानक विश्वनाथ जी गोपी स्वरूप में आ गए और वहाँ पर फूल बिनने लगे कुसुम सरोवर में। तो वो जो डाकू थे जो मारने के लिए भेजे थे आदमी, वो जाकर लड़की को पूछते हैं, तुमने साधु को देखा यहाँ पर जाते हुए? उसने कहा हमने नहीं देखा, तो यहाँ पर फूल बिन रहे, आप तो कब से फूल बिन रहे, आपको देखा होगा ना साधु यहाँ पर चले गए। बोले नहीं दिखाई पड़ा उनको। फिर वो आगे ढूंढने के लेके गए तो फिर उनको दिखाई पड़े, लेकिन तब तो उजाला हो गया था। तो उनको भी समझ में आया कि वो जो गोपी हमको मिली थी ना तो यही थे वो, तो उनके चरणों में गिर गए वो। तो ये भी लीला कुसुम सरोवर के किनारे हुई है। कुसुम हाँ ड्रामा में, ड्रामा क्या था, मेरी बेटी ड्रामा में थी उसमें। हाँ बहुत सुंदर ड्रामा है वो, जिसमें विश्वनाथ जी वो कुसुम सरोवर के वन में गोपी बन जाते हैं तुरंत, और फिर विश्वनाथ जी बन जाते हैं। और उसमें एक जगह पर बैठे हुए हैं और शास्त्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है और सब जगह वर्षा हो रही है, जहाँ पर बैठे वहाँ पर वर्षा नहीं हो रही। ये भी उनका लीला है। और जो वो गोविंद जी की मूर्ति है ना वृंदावन जयपुर में, उन्होंने इनकी प्रेरणा से बलदेव विद्याभूषण गए थे जयपुर में, उस सभा में गए थे, तो स्वयं गोविंद जी ने बलदेव विद्याभूषण को भागवतम के ऊपर भाष्य डिक्टेट किया था, तो इसलिए उनका नाम पड़ा विजय गोविंद। तो विजय गोविंद जी की मूर्ति जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मंदिर में है, राधा गोकुलानंद जी के मंदिर में ही उनकी मूर्ति है, राधा विजय गोविंद। तभी विश्वनाथ जी बहुत बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो समारंभ में सभा में जा सकते नहीं थे, तो युवा अवस्था में जो बलदेव जी थे उनको भेज दिया उन्होंने। तो बलदेव जी को गोविंद जी ने स्वयं अपने मुख से श्रीमद् भागवत पर भाष्य सुनाया है, डिक्टेट किया, रात भर उन्होंने लिखा, जो कई महीनों का काम था वो एक रात में उन्होंने लिखवाया भगवान ने अपने मुख से उनको, और फिर विद्वानों की सभा में गौड़ीय संप्रदाय को मान्यता प्राप्त हुई, ऐसी कथा है इनकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आपको आखिरी कथा बताते हैं, वो है गुलाल कुंड की। ये गुलाल कुंड जो है वो गोवर्धन के ही परिक्रमा में आता है, थोड़ा दूर है हट के, डीग रोड पर है। और डीग रोड का मतलब क्या है, दीर्घपुर। दीर्घपुर ये राम जी के भाई भरत जी का राज्य था, जो उन्होंने गोवर्धन के पास में बसाया था, उसका नाम था दीर्घपुर। और दीर्घ विष्णु की मूर्ति स्थापना की थी, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा डीग। तो गुलाल कुंड जो है वो ऐसा सुंदर स्थान है कि वहाँ पर एक बार राधा और कृष्ण एकांत में जाके बैठे थे पास पास में, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मग्न हो गए थे, आसपास का कुछ भान नहीं था। कुछ देर के बाद में सब सखियाँ आई, वो देखा कि बहुत ही एक दूसरे में मग्न हो गए, पास में गए तो भी होश नहीं आया, पास में इर्द गिर्द गए तो भी होश नहीं आया। तो उन्होंने जाकर पीछे से जाकर चुपके से कृष्ण का उत्तरीय वस्त्र का एक कोना, राधा रानी के दुपट्टे का दूसरा कोना बांध दिया, उसको गांठ मार दी। तो जब बहुत देर के बाद इनका लीला समाप्त हुई तो उठे, तो सब गोपियाँ छुप कर देख रही थी, तो जब उठे तो शर्माए, क्योंकि वो उनका गांठ जो है ना उनको ऐसे खींच रहा है, मतलब ऐसा अलग जाने का कोशिश किया तो वो गांठ जो है वो उनको बंदी हुई है, तो गांठ को देख कर थोड़े शर्मा गए वो, और सब गोपियाँ हंस पड़ी जोर से। तब वो सब कॉन्शियस हो गए, अरे सब लोग ये खड़े हैं, हम लोग अकेले बैठे। तो वो उनको सहमे सहमे संकोच में और लज्जा में देखकर सभी गोपियों ने पिचकारी निकाली और रंग चलाया उनके ऊपर। रंग का मौसम नहीं था, क्योंकि क्या आनंद आया, क्या मजा आया, पिचकारी निकाली और दोनों को पूरा धो दिया रंग से, और इतना रंग डाला इतना पिचकारी चलाई कि जो उनके शरीर से रंग जो है उतर कर जो बहकर नीचे इकट्ठा हुआ उससे गुलाल कुंड बना। गुलाल का जल बनाया और पिचकारी में जाके उन पर चलाया तो विशाल कुंड का निर्माण हुआ, उसका नाम हुआ गुलाल कुंड। और ये स्थान इतना विशेष स्थान है कि इनको ऑफ सीजन होली खेल कर भिगाया गया, तो इस स्थान पर साल के 12 महीने 365 दिन होली चलती है निरंतर, बाकी जगह पर 45 दिन होली चलती है, वसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा के बाद में 5 दिन तक 45 डेज ब्रज में होली होती है, लेकिन इस जगह पर पूरे 12 महीने होली चलती है। जब भी जाओ गुलाल उड़ेरते हैं आपको, पचकारी मारते हैं और वो कुंड भी वहाँ पर पूछते हैं। तो चतुर्भुज दास नाम के संत थे, उनका नाम था, उनका पुत्र का नाम था राघव दास जी। राघव दास जी यहाँ पर भजन करने गए थे तो उनको भजन में निरंतर होली का लीला का दर्शन हुआ था। और ये गुलाल कुंड और एक कारण फेमस है बहुत, श्रीनाथ जी जब थे ना तो उनका विग्रह था पहाड़ के ऊपर, गोवर्धन पहाड़ के ऊपर, तो माधवेंद्रपुरी ने उनको प्रकट किया था ना, आप जानते हैं ना गोपाल जी को, तो गोपाल जी तो चैतन्य महाप्रभु आने के बहुत पहले ही, माधवेंद्रपुरी तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, दो पीढ़ी दादा गुरु हैं उनके, तो उनके बहुत देर बाद वो वृंदावन आए थे। तो माधवेंद्रपुरी के समय पर माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी को प्रकट किया था, है ना। तो जब महाप्रभु चैतन्य आए तो उन्होंने अपने गुरु के मुख से माधवेंद्रपुरी जो गुरु के गुरु थे उनकी कहानी सुनी थी कि उन्होंने वृंदावन में गोवर्धन में गोपाल जी को प्रकट किया है और वह गिरिराज जी के ऊपर है और हम लोग वैष्णव लोग गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते नहीं हैं और उनको गिरिराज जी में चढ़ गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए गोपाल जी का दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। तो क्या करें, अभी चढ़ना भी नहीं दर्शन भी करना है, तो भगवान तो अंतर्यामी है। गोपाल जी के मन में भय भाव आया कि चैतन्य महाप्रभु को दर्शन कराना है, वो ऊपर नहीं आ रहे हैं, मुझे दिखना चाहते हैं। तो गोपाल जी ने गांव में ऐसा अफवाह फैलाई कि मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं, मुगल आ रहे हैं। तो ब्रजवासी पुजारी बोले अरे मुगल आ रहे तो इसको मूर्ति को तोड़ देंगे, तो मूर्ति को लेके भागे और ये गुलाल कुंड में लेके आए, वहाँ पर छुपा के रखा। तो महाप्रभु को पता चला कि गोपाल जी पहाड़ से उतर कर गुलाल कुंड में आए हैं, तो महाप्रभु जी गोवर्धन में थे उस समय, भाग के गुलाल कुंड में गए और 7 दिन और 7 रात गोपाल जी का खूब दर्शन किया, बहुत कीर्तन किया, ब्रजवासियों को लेकर बहुत नाचे, सबको प्रेम कीर्तन का लाभ लिया। उसके बाद भी सबको पता चला कि अफवाह झूठी थी, तो ब्रजवासियों ने पुजारी ने सोचा कि दोबारा उनको पर्वत पर बिठाना चाहिए। तो उस जुलूस का नेतृत्व चैतन्य महाप्रभु ने किया और महाप्रभु ने धूमधाम से कीर्तन करते हुए वहाँ से चलकर जुलूस लेकर गोवर्धन के तलैटी पे गए जतिपुरा तक, और जतिपुरा के ऊपर ब्रजवासियों ने उनको गोपाल जी के ऊपर बिठाया। ऐसा एक गुलाल कुंड लीला है। आज भी आप वहाँ जाएंगे ना तो एक तमाल का पेड़ है जो कृष्ण का प्रतीक है और एक कदम का पेड़ है जो राधा रानी का प्रतीक है, और दोनों की शाखा में ऐसे गांठ पड़ी हुई है, लिटरली गांठ पड़ी हुई है, आज भी है वो गांठ जहाँ पर वो बैठे थे और जहाँ पर गांठ लगाई गई थी, इसलिए उस जगह का नाम है गांठोली, उस गाँव का नाम है गांठोली और कुंड का नाम है गुलाल कुंड, और वहाँ पर होली का उत्सव निरंतर चलते रहता है। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं ब्रज में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो जगह है ना गुलाल कुंड, इसका थोड़ी आगे जाएंगे तो एक जगह है टोड़ को घनो, ऐसी एक जगह है टोड़ को घनो, वहाँ पर एक क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा, एक संत रहते थे, उस संत के हाथ से गोपाल जी को भोजन खाना था, इसलिए वो कुंभन दास नाम के भक्त थे, उनको बोला मुझे ले चलो वहाँ पर। अफवाह चली थी, उन्होंने दो दो काम किए एक ही साथ में, अफवाह चलाई थी तो एक तो कारण था महाप्रभु को दर्शन देना है चैतन्य महाप्रभु को, और एक वो संत को तोड़ के घने में रहता था ना उसके हाथ से भोग खाना था। तो सबसे पहले वो कुंभन दास जी उनको वहाँ ले गए और वहाँ जाने के बाद में दोपहर का भोग वो भक्त ने उनको लगाया, और उसमें क्या खिलाया उनको, वो दिन था भाद्रपद त्रयोदशी, भाद्रपद शुद्ध त्रयोदशी के दिन गोपाल जी श्रीनाथ जी महाराज पहाड़ से उतरे, टोड़ के घने के जंगल में गए और वहाँ पर उस भक्त का भोग खाया। उसमें कौन सी सब्जी बनी हुई थी, कंटोले की सब्जी बनी हुई थी, इसको ब्रज में ककोड़ा कहते हैं। इस दिन आज भी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन आज भी टोड़ को घनों में गोपाल जी महाराज को कंटोले की सब्जी खिलाते। उसके बाद में वो गुलाल कुंड पे आए हैं और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु उनकी मुलाकात हुई। तो चैतन्य महाप्रभु भी गोपाल जी को गले मिले, आलिंगन दिया है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।